चलिए अब अगली सूरत शुरू करेंगे, सूरत तौहा। आप कह सकते हैं कि अगर सूरत मरियम के अंदर हज़रत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम के नाते से नसारा की बात हुई, तो सूरत तौहा में मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से बनी इसराइल की बात होगी। बहुत खुशनुमा सूरत है, कहानी है, बस पढ़ते हुए तसव्वुर करें और साथ ही साथ अमल की चीज़ें लेते जाएं। सूरत के शुरू ही में अल्लाह ताला अपना तारुफ करवाते हैं और आयत नंबर 9 से वहल अता का हदीस मूसा, क्या आई है तेरे पास मूसा की खबर। यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम की पहली मुलाकात के बारे में तذکرہ है। अगर इन लफ्ज़ों को पढ़ते हुए अपने दिल पर महसूस करें तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कैफ़ियत को महसूस कर सकेंगे जो इस वक्त हुई होगी जब अल्लाह ताला ने इनसे कलाम किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के इब्तदाई अय्याम मिस्र में गुज़रे, फिरौन के घर में पले बढ़े। जब जवान हुए तो एक ऐसा हादसा हुआ कि मदीन चले गए, वहाँ गए तो शादी हुई। शादी की शर्त थी कि 8 या 10 साल यहाँ रहोगे। शर्त पूरी की, घर वालों की याद सताई। मदीन से मिस्र आ रहे थे, बीवी साथ थी। इसराइली रिवायात में इनका नाम सफूरा आता है। सर्दियों की रात थी, दूर से आग देखी और मूसा अलैहिस्सलाम एक अच्छे शौहर होने के नाते कहते हैं कि आप यहाँ ठहरें, मैं आग लेकर आता हूँ। इससे क्या पता चला कि शौहर की ज़िम्मेदारी है कि औरत के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी का अहतमाम करें। लेने तो गए थे आग, मिल गई पैगंबरी। हाईलाइट करें, एक जुमला आपके लिए बोलूं, आप तो आए हैं यहाँ दीन और दुनिया लेने। दीन और दुनिया पढ़ने आए हैं कि लेने आए हैं? आपको दीन और दुनिया की हर भलाई मिल सकती है यहाँ से, पूरे यकीन के साथ। यानी इस स्टोर पे सब कुछ मिलता है। क्या कहते हैं ऐसे स्टोर को? यूटिलिटी स्टोर। एक होता है क्लोदिंग स्टोर, वहाँ कपड़े मिलेंगे। एक शू स्टोर है, जूते मिलेंगे। एक गोश्त की दुकान है, वहाँ सिर्फ गोश्त मिलेगा। और जिन जगहों से सब कुछ मिल जाए ये वो जगह है। अब ये आपका नसीब है, मैं आपको नहीं दे सकती, कोई भी नहीं दे सकता। अगर आप लेना ना चाहेंगे तो पता भी नहीं होता शुरू में कि हमें आगे जाके मिल क्या जाना है। और मैं अपने एक्सपीरियंस को कह लीजिए या जो देखती हूँ इर्द गिर्द लोगों की फीलिंग्स सुनती हूँ, शेयरिंग्स आती हैं, कि वो लोग जो पहली दफ़ा कुरान पढ़ते हैं उनको नहीं वाकई पता होता कि आगे होना क्या। देखिए एक छोटी सी मिसाल से थोड़ी सी बात समझा दूँ। शादी क्या होती है? आजकल तो वक्त ही बहुत एडवांस हो गया है ना। आज से 10-15 साल पहले भी लड़कियों के लिए शादी सिर्फ अच्छे कपड़े, खाने, दावतों और मेकअप का नाम था, ऐसे ही है ना। लेकिन बाद में शादी के साथ क्या कुछ और भी मिलता है, क्या जिम्मेदारियाँ, क्या मोहब्बतें, क्या कुछ होता है। आप बहुत छोटी चीज़ सोचते हैं लेकिन अल्लाह आपको उसके बदले में बहुत बड़ी चीज़ देता है। सारी मिसालें दुनिया की चीज़ों की इकट्ठी कर लें, जब बंदा कुरान सीखने आता है, कुरान पढ़ने आता है, आप में से कई लोग सिर्फ अपनी दोस्तों के कहने पे आए होंगे, ऐसे ही है। एक बच्ची कल आई थी, किसी के साथ आई थी अपनी दोस्त के, मुझे मिलने आई थी, तो मैंने उससे कहा था कल भी आइएगा, आप थी। आज दोबारा आई है ना, कल आप अपनी दोस्त के कहने पे आई थी, आज आप अपने दिल के कहने पे आई हैं। एक एक बार अपनी दोस्तों को चक्कर लगवा दें ताकि आपका फ़र्ज़ पूरा हो जाए। नंदों को ले आएँ, भाभियों को ले आएँ, साथ रहने वालों को ले आएँ, जिसको मर्ज़ी ले आएँ, एक दफ़ा के मेरे लिए चलो, अगली दफ़ा खुद जाना। ये ऐसा प्यारा सफ़र है। तो अब दोबारा सुनिए इस जुमले को, लेने तो गए थे आग, मिल गई पैगंबरी। वहाँ पहुँचे तो पुकारा गया, मूसा मैं ही तेरा रब हूँ। सूरत मरियम में हमने देखा हज़रत ईसा का पहला कलाम इन्नी अब्दुल्ला था और इसके बाद क्या थी, नमाज किताब। यहाँ मूसा की नबूवत का पहला दिन है और पहली चीज़ क्या है, नमाज। अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। देख लीजिए फिर हमारी ज़िंदगियों में नमाज का क्या मुकाम है। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए तो हाथ में असा था। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं ये क्या है, पता तो था अल्लाह को भी, लेकिन असल में हज़रत मूसा का खौफ कम करना चाहते थे। शामिल कर रहे थे उनको बातों में, क्योंकि पहली दफ़ा की मुलाकात और रात का वक्त, घबराहट तो होनी थी मूसा को। इन आयात के एक एक लफ्ज़ में मानी के ख़जाने हैं। देखिए, अल्लाह ने पूछा था ये क्या है, इसका सादा सा जवाब था ये लाठी है। लेकिन जिनको अल्लाह ताला से बात करने में मज़ा आता है वो ख़ुद ही बात बढ़ाते हैं, इसलिए उन्होंने लाठी के कुछ इस्तेमालात बताए कि अल्लाह ताला से बात करने का जो लुत्फ़ है इसको पा सकूं। समझ आ रहा है? तर्जमा पढ़ो मैं आप में से किसी ने इन सूरतों का। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी बात में से बात निकाल रहे हैं मूसा। एक होता है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, अच्छा एक होता है अस्सलाम वालेकुम, कहता है वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका। ये फ़र्क क्या है दोनों स्टाइल में? पहली में आप कहते हैं जाएं जाएं, बात नहीं करनी आपसे, और दूसरी में आप बात बढ़ा रहे हैं। मूसा बात बढ़ा रहे हैं। क्या मैं और आप भी नमाज में बात बढ़ाते हैं, लंबी नमाजें पढ़ पढ़ के? इससे पता चलता है कि जो अल्लाह ताला से बात करना चाहता है वो नमाज को जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं करता, बल्कि सुकून के साथ नमाज अदा करता है। मूसा ने तो इतने फ़ायदे बताए इस लाठी के, लेकिन देखिए आसमान से क्या आवाज़ आती है, अलकेहा, फेंक दो इसको। ये है अल्लाह का फ़ैसला और ये सिखाता है हम सब को रोज़ा। हम जिन चीज़ों को सहारा समझते हैं, जिनको अपना समझकर सीने से लगाए फिरते हैं, अल्लाह कहते हैं इसको फेंको। और मूसा ने फेंक दिया और यकायक देखा तो वो एक सांप था जो दौड़ रहा था। ये मुश्किल मरहले दिलों पर सहते हैं अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम, तब ही इनको अल्लाह ताला की तरफ से मोहब्बतें और सारी खैरें मिलती हैं। फिर फरमाया पकड़ लो इसको और डरो नहीं, हम इसको बिल्कुल वैसा ही कर देंगे जैसा वो पहले था। सोचिए, तो ये है दीन इस्लाम का बुनियादी नुक्ता। वो चीज़ें जिनको तुम सहारा समझकर पकड़े रहते हो, अल्लाह ताला कहता है फेंको, क्योंकि ये जायज़ नहीं, ये हराम है, ये नाजायज़ कमाई के सांप हैं। तुम असा समझते हो लेकिन असल में ये बहुत घुन लगे हुए हैं। और वो चीज़ें जिनको हम शरीयत के सांप समझते हैं, वो मुश्किल चीज़ें हैं जिनसे भागते हैं। कहा पकड़ो इसको, जिसको हिदायत समझ आ गई इसमें बंदगी की रूह आ जाएगी। हम जिन चीज़ों को कुछ और देखते हैं, हकीकत में वो कुछ और होती हैं। इसको भी हाईलाइट कीजिए, पारे के उनवान को भी नोट कीजिए कि कुछ चीज़ें जो बज़ाहर असा दिखती हैं, मसलन सूद, हम कहते हैं एक ऐसा मरहला है कि हम इससे आगे बढ़ नहीं सकते, सूद हमारी ज़रूरत है, इसके बग़ैर ये नहीं, उसके बग़ैर वो नहीं है। अल्लाह कहता है ये फेंको, ये अपना सहारा देने वाले लग रहे हैं, इनको फेंक दो। दूसरी तरफ शरीयत की रस्सियाँ जो सांप लग रही हैं, पकड़ो तो सही, डरते क्यों हो। ये बात जिसको समझ आ जाएगी इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, और शैतान ये बात समझने नहीं देता। किस किस को ये बात समझ आ गई है? अल्हम्दुलिल्लाह, यही है पूरे इस्लाम का खुलासा। अपनी अक्ल ना इस्तेमाल करो, अल्लाह का हुक्म मानो। आज लोग कहते हैं लॉजिक देंगे तो बात करेंगे, लॉजिक के बगैर तो बात ही नहीं समझ आती। फिर इसके बाद देखिए आयत नंबर 37 में पहली वही का मौका है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह सुबहान तआला के साथ कलाम है। और वलकद मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा, और हमने तो आपके ऊपर इससे पहले भी बड़े एहसान किए हैं। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनके बचपन के बारे में बता रहे हैं कि आज ये पहला एहसान नहीं है जो आज तुम्हारी दुआ पर तुम्हारे भाई को भी नबूवत दे दी है, हम तो आप पर बहुत बड़े एहसान कर चुके, आप तो बचपन से आजमाए गए, बाकी नबियों की आजमाइशें हुई। 40 बरस के बाद जब नबूवत मिली, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आजमाइश तो दुनिया में आने से पहले शुरू हो चुकी थी। सूरत अल-क़सस में इसकी तफसील बयान की गई। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर इतनी मासूमियत और इतनी मोहब्बत रखी हुई थी कि जो देखता इसको प्यार आ जाता। फिरौन ने कई बार मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया, लेकिन इस मोहब्बत के आगे कुछ न कर सका, यानी जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने मूसा को फिरौन के घर में ही पलवाया, जिसने मूसा के लिए हज़ारों बच्चे मरवा दिए। वो रब कौन है जो डरे मूसा से, और वो रब कौन है जो फिरौन से डरे? अल्लाह किसी से नहीं डरता, अल्लाह अपने काम लेने पे आता है। बंदे उंगलियां मुंह में दबा के हैरान रह जाते हैं, काम हो जाते हैं। ये अल्लाह के साथ आपके गुमान की बातें हैं, इसलिए हमेशा अल्लाह के साथ अच्छे से अच्छा गुमान रखिए। इसके बाद आयत 40 में फरमा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत सारी आजमाइशों से गुजरने के बाद इनको रिसालत दिया जाना, یہ بڑی اہم بات ہے، غور سے سنیے گا. وَفَتَنَّاكَ فَتُونَا، اے موسیٰ ہم نے تجھے آزمایا اور خوب آزمایا، اور جب ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَا مُوسَىٰ، پھر تو ہمارے مقرر کردہ سٹینڈرڈ اور معیار کے مطابق جب پورا اترا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تو میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا. یہ ہے اللہ کا انتخاب. بڑی رومانٹک آیتیں ہیں. اللہ اور بندے کا پیار ان آیتوں میں جیسے جھلکتا ہے نا، یہ کسی اور جگہ نہیں جھلکتا. ہم آزمائشوں سے گھبراتے ہیں، اصل میں اللہ ہمیں چھانٹ رہا ہوتا ہے. اللہ نے جب نبوت کا کام لینا تھا تو موسیٰ کو کچے ہاتھوں میں رکھتے ہیں. یاد رکھیے، جن سے دین کے کام اللہ نے کرانے ہوتے ہیں ان کو چھان پھٹک کیسے نکھار کے لے آتا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے، چھاچ الگ ہو جائے اور مکھن الگ ہو جائے. آپ میں سے بھی اگر کسی نے سچے دل سے نیت کی ہے نا نیکیوں کا اور دین کا کام کرنے کی اور دائل اللہ بننے کی، تو تیار رہیے. جب کبھی آپ کے اوپر ایسے حالات آئیں جو آپ کو لگ رہے ہو سوٹیبل نہیں، مان لیجئے الحمدللہ پہلی قسط آ گئی ہے تکلیفوں کی. جس طرح اللہ کے رستوں میں اللہ کی مدد کا وعدہ ہے نا، اسی طرح اللہ کے رستوں میں آزمائشوں کا بھی وعدہ ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سوچ لیا کہ تم ایسے ہی جنت میں بھیج دیے جاؤ گے اور ابھی تم پہ وہ مثال ہی نہیں آئی جو پہلوں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کو بہت ساری آزمائشوں سے گزارنے کے بعد رسالت دینے کے لیے منتخب کر لیا. دیکھیے، آپ میں سے کوئی میڈیکل میں ہے؟ میڈیکل کالج میں جانے سے پہلے ٹیسٹ لیا تھا انہوں نے؟ لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی انجینئرنگ کالج میں داخل ہے؟ کیا اس سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے؟ مختلف ٹیسٹوں کے نام تو لیں ذرا، ہے نا ٹیسٹ. اب تو کسی جگہ داخل ہونے سے پہلے بھی ٹیسٹ اور ٹیسٹ کے لیے ٹیوشنیں پڑھنی پڑتی ہیں. تو جب انٹری ٹیسٹ ہے، یہ انٹری ٹیسٹ ہے، لکھ لیں. آج کل اگر یہ گرمی ہے نا، دیکھیے اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ آپ کے لیے 24 گھنٹے اے سیوں کا انتظام کر دے؟ ممکن ہے اللہ کے لیے، ابھی بھی ممکن ہے. لیکن اللہ آپ کو مجھے ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہم کتنا صبر کر سکتے ہیں. جمے رہیں گے نا تو صحابہ کو تو گرمیوں میں گرمی اور سردیوں میں سردی نہیں لگتی تھی. واقعات بہت سارے ہیں، لیکن نوٹ کیجئے ذرا آگے سے. اللہ جب کسی کو اپنے کام کا بتاتے ہیں تو اس سے پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں. دنیا میں لوگ منتخب کیے جاتے ہیں، مختلف ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، پھر وہ آرمی میں داخل ہوتے ہیں. اسی طرح پائلٹ بننے کے لیے کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ پائلٹ بنے گا کہ نہیں بنے گا. جی، آپ کو پتہ ہے کہ پائلٹ بننے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اپنے گھر کے ایک بچے کو بھی موقع ملا تو سر سے پاؤں تک انہوں نے اس کو چیک کیا ہے کہ اس کا دل دماغ سب ٹھیک ہے. پتہ چلا کہ پائلٹ صاحب کو کچھ ہو گیا جہاز چلاتے ہوئے تو ساروں کا کیا حال ہوگا. پھر بھی جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو جب دنیا میں اتنی مشکل ہے تو اللہ کیوں نہ دیکھے. اسی طرح اللہ جب کسی بندے کو چننا چاہتا ہے تو اس کے ٹیسٹ لیتا ہے، مشکلات کے ٹیسٹ، آزمائشوں کے، رشتوں کی، محبتوں کے. اور جب بندہ ساری چیزوں سے نکلتا سارے ٹیسٹ پاس کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. یہ اللہ ہمیں بھی اپنے لیے چن لے، ہمیں اپنا بنا لے. کتنے خوش قسمت ہے حضرت موسیٰ، لیکن کتنا مشکل امتحان تھا کہ پہلے ہی دن سے مشکلات میں تھے لیکن اللہ کے فیصلوں کو قبول کیا. آپ بھی کیجئے، یہی کام ہے. پارے کے موضوع کو پھر اس آیت پر لائیں کہ اللہ جکن کو چنتا ہے جو ہر مرحلے کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیں. جب کبھی بھی اپنے لیے دعا مانگے تو کہے کہ اللہ مجھ سے کوئی بڑا کام کرا، یا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. اور ساتھ دل پر پتھر بھی رکھا کرے کیونکہ آزمائشیں آئیں گی. دیکھیے، آپ سستی چیز خریدیں گے تھوڑے پیسے دیں گے، مہنگی چیز پسند کی ہے تو قیمت زیادہ دینی پڑے گی نا. تو آپ نے اگر مہنگا راستہ ڈھونڈا ہے تو پھر آپ کو قیمت تو زیادہ دینی پڑے گی. اور اسی طرح سے جس نے یہ دعا مانگی، ساتھ میں اس کو یہ زندگی کی لذتیں بھی مل جائیں گی. پہلے شروع میں آزمائشیں آتی ہیں، پھر آسودگیاں آتی ہیں، یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اور جس کی زندگی اللہ نے قبول کر لی، وہی بس اپنے آپ کو دنیا میں خوش قسمت سمجھے گا، باقی تو صرف بیگار کی کاٹ رہے ہیں. اللہ ہم سب سے آسانیوں کے ساتھ دین کے کام کروا لے. اس کے بعد آیت 44 میں اللہ تعالیٰ بات کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ فرعون جیسا دشمن بھی سامنے آ جائے تو نرمی سے بات کرنا، دین کا پیغام نرمی کے ساتھ پہنچانا ہے. اس کو ہائی لائٹ کرے، جب دائیے دین کے درجے پہ پہنچ جائیں گے اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا. سخت زبانوں سے دلوں میں قرآن نہیں جاتا. आप देखिए कि जो हल्की बारिश होती है ना, वो मट्टी के अंदर जाती है और उससे ज़मीन ज़रखेज़ होती है, बीज उगते हैं। तेज़ बारिश आती है ना, तो ऊपर की ज़रखेज़ मट्टी को भी बहा के ले जाती है। तो दावत हो, तबलीग हो, अपने बच्चों को दीन की बात कहना हो, अपने शौहर या बीवी को या किसी साथी को भी दीन की बात समझानी हो, तो आवाज़ों को नरम रखिए। नरम दमे गुफ्तगु, गरम दमे जुस्तजू, पाक दिलो पाक जो। ये चंद खूबियाँ आती हैं ना, तो इंसान लीडरशिप की क्वालिटीज़ को पा लेता है और फिर अल्लाह उसको बहुत अच्छे साथी देता है। हमारे अंदर नरमी नहीं आएगी ना, तो याद रखिए जो अच्छे लोग हैं वो हमारे से दूर चले जाएंगे। पीछे पढ़ कर आए अल्लाह के नबी की खूबियाँ, फ़बी मराहमत मिनल्लाह लिंत लहुम। ये तो अल्लाह की रहमत से आप इनके लिए नरम साबित हुए हैं। तो नरमी की बात कीजिए। इसके बाद आयत 77 देखिएगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक और दौर शुरू होता है इस आयत में, कि किस तरीके से उनको अल्लाह सुबहाना ताला ने आज़माया, जिसमें फ़िरौन से निजात का बयान है और साथ ही साथ नेमत मनोसलवा का तस्करा है, और साथ ही साथ अल्लाह ताला अपना वादा बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला किसको माफ़ करेगा। नंबर एक, पहली शर्त तौबा, तौबा करने वालों को अल्लाह माफ़ कर देगा। फिर ईमान लाएँ, फिर नेक अमल करें, और फिर इस्तकामत इख्तियार करें। ये चार काम करने वालों से ये वादा किया गया कि मैं तुम से दरगुज़र करूँगा। अल्लाह करे कि हमें भी ये चारों काम करने की तौफीक मिल जाए। फिर आयत 99 से अल्लाह ताला अपने नबी से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं। अक्सर सूरतों के एंड पे अल्लाह ताला नबी सल्लम को जो कहानी सुनाई होती है उसमें से एक किस्म की मॉरल पिकिंग सिखाते हैं। क्या फरमाते हैं कि हमने नबियों के हालात बयान किए हैं, और जो इस कुरान से मुँह फेरेगा और नसीहत से मुँह फेरेगा वो क़्यामत के दिन गुनाहों का बोझ उठाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। आयत 103 से अगली चंद आयतों में क़्यामत के दिन का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि क़्यामत के दिन ये ज़मीन मैदे की रोटी की टिकिया की तरह होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस ज़मीन पे किसी ने किसी का खून नहीं बहाया होगा, यानी अल्लाह ताला एक साफ़ सुथरी ज़मीन बनाएंगे और उस पर फिर क़्यामत आएगी। आयत 115 में आदम अलैहिस्सलाम का तस्करा है, जब अल्लाह ताला ने कहा कि शैतान तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है, तो कहीं तुम दोनों को जन्नत से ना निकलवा दे। अगर गौर करें तो ये जुमला सिर्फ आदम के लिए नहीं था, आज हमारे भी लिए है। इस पर गौर की ज़रूरत है। आदम अलैहिस्सलाम एक नाफरमानी पर जन्नत से निकाले गए। हाईलाइट कीजिए, आदम सिर्फ एक नाफरमानी पर जन्नत से निकाले गए, तो क्या आज हम ढेरों नाफरमानियों के बावजूद उसी जन्नत में दाखिल होंगे? यहाँ गौर तलब बात यह है कि तौबा का पानी कितना प्यारा होता है। आदम को तौबा की तौफीक मिली और इन पर अल्लाह ने मेहरबानी से तवज्जो फरमा दी और सीधी राह बताई। अमल और नसीहत के एतबार से सूरह तौहा की सबसे अहम आयत 124 से 125 है। वो क्या है, आइए ज़रा देख लेते हैं। 124 और 125, वमन आरादान ज़िक्री फ़ैन लहू मईशतन दन का, और जो कोई हमारी नसीहत या हमारे ज़िक्र से मुंह फेरेगा, एराज करेगा, तो बेशक उसके लिए तंग ज़िंदगी होगी, और क़्यामत के दिन हम उसको अंधा उठाएंगे। इमेजिन कीजिए, वो कहेगा मेरे रब क्यों मुझको अंधा उठाया, मैं तो देखता था। कहा जाएगा इसी तरह तेरे पास हमारी आयतें आती थी तो उनको भूल गया, और इसी तरह आज के दिन तुम भुलाए जाओगे। ज़रा सा इस पे गौर कीजिए। आज डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब मईशतन ज़नका की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। सूरत नहल में हमने पढ़ा कि अल्लाह की तरफ आने से हयात तय्यबा मिलती है, फ़ला नुख्यन्नहु हयातन तय्यबा, और यहाँ ज़िंदगी के तंग होने की बात है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि जो नसीहत से मुंह फेरेगा इसको खौफ यानी डिप्रेशन लाहक होगा। माल कम हो गया, कारोबार ठप हो गया, ये दुनिया की तंगियाँ हैं आज जिसका इंसानियत शिकार है। दूसरी तंगी क्या है कि कब्र तंग होगी। अल्लाह के नबी ने काफिर की कब्र का ज़िक्र करते हुए फरमाया کس کی قبر اتنی تنگ ہوتی ہے کہ پسلیاں آپس میں یوں ملتی ہیں، یہ دیکھیں ایسے ہوتی ہیں نا ربس، تو یہ ایسے جاتی ہیں، کچھ عمر نہیں نکلے گا اس کے اندر، پھپھڑے گردے جو کچھ تھا سب اندر سے ختم ہو جائے گا نا، یعنی قبر کو بھینچا جاتا ہے کہ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ بے نماز کے بارے میں بھی ایسا ہی آتا ہے، ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اگر کوئی مجھے کہے، اپنے اوپر لیجئے گا، کہ کچھ دن بعد تمہاری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، تو کیسا محسوس ہوگا؟ شاید ابھی سے کچھ نہ دکھے۔ جو آنکھیں اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر بھی نہ سمجھیں تو پھر ان کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہوگا۔ سورت کی آخری آیات میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے اوپر والوں کو نہ دیکھو ورنہ دکھی ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور اچھی بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی سورۃ طٰہٰ بھی اینڈ ہوئی اور 16واں پارہ بھی پورا ہوا۔